ओम शांति। बहुत ही प्यार से ओम शांति, ओम शांति। आज ज्ञान सरोवर के प्रांगण में, जहां प्रकृति का इतना सौंदर्य, प्रकृति अपने आप में आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर के एक सुंदर सम्मेलन जो आज होने जा रहा है, जिसका बहुत ही सुंदर विषय पर हम सभी विचार विमर्श करेंगे, अपने अपने अनुभवों को आदान प्रदान करेंगे। आप सभी भारतवर्ष के कोने कोने से, और हम यही कहेंगे, विशेष प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के निमंत्रण को आपने स्वीकार करके आज सहर्ष सभी यहां पहुंच चुके हैं, तो आप सभी का हम बहुत ही दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के ये संगोष्ठी होने जा रही है, आध्यात्मिकता के द्वारा मानव जीवन का उत्थान। इस विषय पर अपने अपने अनुभव देने के लिए हमारे महान विभूति संत महंत महामंडलेश्वर और हमारी विशेष अनुभवी मूरत त्यागी दीदी सभी उपस्थित हो चुके हैं। तो इस मंच की सज्जा के लिए, इस मंच को अपनी दिव्य आभा से आलोकित करने के लिए, मैं आप सभी महान विभूतियों को मंच पर बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करती हूं। सबसे पहले आज हमारे बीच परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी, आपसे मेरा अनुरोध है, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आप अध्यक्षा धार्मिक प्रभाग और प्रयागराज की पावन भूमि से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी, जो कि आप संचालिका है, जिस ज्ञान सरोवर परिसर में आप बैठे हैं, आपका इस परिसर में जो आप बैठे हैं उसका बहुत ही कुशल रीति से संचालित करते हैं, तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सम्माननीय हमारे संत महंत को भी मैं अनुरोध करती हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर जी महाराज, दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, आपसे भी हमारा अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज, सचिव ऑल इंडिया साधु समाज भुवनेश्वर से आप हमारे बीच में हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है मंच पर आकर के इस मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। कुछ ही समय में हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी हमारे बीच में आएंगे, आपसे भी हमारा अनुरोध है आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबको विशेष मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य अतिथियों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। स्वामी विष्णुगिरी जी महाराज, सचिव उड़ीसा साधु संत समिति भुवनेश्वर से हमारे बीच में। और आज इस सम्मेलन का लक्ष्य, उद्देश्य और इस संस्था के बारे में हम सबको अवगत कराने के लिए हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी को भी मैं अनुरोध करती हूँ मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और इन महानुभावों के स्वागत में आप सभी ताली की गड़गड़ाहट बजाते रहेंगे तो ये स्थान आपकी उपस्थिति से खुशहाल हो जाएगा, खेल उठेगा। इसीलिए सभी महानुभावों के लिए आप ताली बजाते रहें। स्वामी विष्णु गिरी जी महाराज सचिव उड़ीसा साधु संत समिति भुवनेश्वर से आप हमारे मध्य पधारे हैं। स्वामी श्री श्री राजन जी महाराज मुख्य संचालक प्रज्ञा धाम पन्ना से आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपसे भी हमारा अनुरोध है मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। श्री श्री 1008 स्वामी राघवानंद जी महाराज करनाल से हमारे बीच में हैं। आपसे भी मेरा नम्र अनुरोध है मंच पर आइए। आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज पीठाधीश्वर पीताम्बरा पीठा विद्यापीठ मोदी नगर से आप विशेष रूप से आए हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी नीताजी महाराज सूरत से विशेष आप हमारे बीच में आए हैं। आपसे अनुरोध है आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 प्रभु रंजन जी महाराज आप कलकत्ता से हमारे बीच पे आए हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री ज्योति प्रसाद उनियाल जी महाराज मुख्य पुजारी यमुनोत्री धाम उत्तराखंड से हमारे बीच पधारे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है आप मंच पर आए और मंच सज्जा को सुशोभित करें। संत नानक दास जी महाराज प्रमुख कबीर पंथ बड़ी खाटू से आप पधारे हैं। आपसे भी मेरा नम्र अनुरोध है मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। महामंडलेश्वर आचार्य डॉक्टर गोपाल खेत्री कलकत्ता से आप हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे अनुरोध है आप मंच पर आए और अपना आसन अपना स्थान ग्रहण करें। और भी कुछ संत हैं जो विशेष रूप से हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। महामंडलेश्वर सुरेंद्र शर्मा जी महाराज बुलंदशहर से आपसे मेरा अनुरोध है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्वामी पंचदेव जी महाराज भुवनेश्वर से महंत सागर नाथ जी महाराज हांसी से गुरु माता अनिता जी महाराज सहारनपुर से संत श्री राजीव मैनी जी महाराज सहारनपुर से आइए। सभी को निमंत्रण है, हम आमंत्रित करते हैं अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। डॉक्टर सचिनानंद जी महाराज ज्योतिषाचार्य उज्जैन से हमारे मध्य है, आपका भी स्वागत है। महंत सागर नाथ जी हांसी से पधारे हैं, आपसे भी अनुरोध है मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। काजी मौसम अख्तर जी कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे हैं, आपसे भी अनुरोध है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। काजी मौसम अख्तर जी कलकत्ता से महंत सुमिरन दास जी नारनोल से संत श्री राम मोहन गोस्वामी महाराज संत श्री राम मोहन गोस्वामी महाराज बसई से हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे में मेरा नम्र अनुरोध है, मंच पर आइए। साध्वी मनीषा जी, साध्वी मनीषा जी से भी मेरा अनुरोध है। आचार्य श्री विजयपाल शास्त्री जी, आचार्य श्री विजयपाल शास्त्री जी से अनुरोध है, मंच पर आए। भगवत आचार्य पंडित श्री राम दयाल पांडे जी, संत श्री अवधेश तिवारी जी महाराज, संत श्री अवधेश तिवारी जी महाराज, संत श्री उमाशंकर द्विवेदी जी महाराज, संत श्री उमाशंकर द्विवेदी जी महाराज, दांडी स्वामी श्री अवधेश आश्रम, श्री श्री चक्रधर दास जी महाराज, श्री चक्रधर दास जी महाराज, श्री बिजेश ब्रजेश गर्ग जी महाराज, जो भी नाम सुन रहे हैं कृपया मंच पर आए। श्री ब्रजेश गर्ग जी महाराज, स्वामी पुष्पेंद्र जी महाराज, त्यागी जी महाराज, रघुनाथ पांडे जी, महेंद्र महाराज जी, उमेश वैद जी, आप सभी से, सभी महानुभाव से आज ये सुंदर स्टेज सज चुका है और सज भी रहा है। और जो संत अभी आ रहे हैं और नहीं पहुंचे हैं, कृपया आप उन्हें भी मंच पर लेकर आएंगे। और मेरा अनुरोध है, आप बहुत दूर दूर बैठे हैं तो ये सीट्स आगे खाली है, तो कृपया आप सभी आगे प्रस्थान करें। थोड़ा आगे आ जाए सभी, बहुत सुंदर लगेगा, आप थोड़ा आगे आ जाए। धारा शिव उस्मानाबाद से दो महाराज आए हैं, कृपया आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आए। और बाकी हमारे जो संत विशेष अपना अमूल्य समय और निमंत्रण स्वीकार करके पधारे हैं, तो आप सभी संतों का भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जिनका नाम नहीं है पर जो संत आए हैं वो कृपया स्टेज पर आए, क्योंकि आज हमारे सभी विशेष महानुभावों का सम्मान का स्वागत का आज हमारा ये समारोह है। तो आज आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, तो आप सभी मंच पर आए। हमारे बीच कथावाचक जो इंदौर से आए हैं, आपसे भी अनुरोध है मंच पर आ जाए। इंदौर से जो कथावाचक आए हैं, आपसे भी अनुरोध है मंच पर आ जाए। आज का ये सुंदर कार्यक्रम शुरू करने से पहले जिस परम पिता शिव परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, उस परमात्मा पिता के संकल्प से आज आप सभी महान विभूतियों का ज्ञान सरोवर में आप सभी पधारे हैं, तो सर्वप्रथम उस परमात्मा पिता को याद करते हुए, उसकी उस परमात्मा पिता का भी आह्वान करते हुए हम सभी एक मिनट के लिए परमात्मा पिता की स्मृति में बैठेंगे, याद में बैठेंगे।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे बीच में इतने सुंदर मंच जो हमारे संतों से जिसको मिलने के लिए हम न जाने कितना प्रयास करते हैं, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष के संत आज इस मंच पर बैठे हैं, कितना सुंदर दृश्य हमें बाहर से नजर आ रहा है। तो एक बार सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि एक बार खड़े होकर के हमारी सभी महान विभूतियों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। थैंक यू। सभी बैठ जाएंगे। आज का हमारा जो विषय है आध्यात्मिकता के द्वारा मानव जीवन का उत्थान। उत्थान और पतन की कहानी हम सभी जानते हैं कि भारत जब इतना महान था, सोने की चिड़िया थी, तब उस भारत में सभी मनुष्य देवी गुण से परिपूर्ण थे। और आज हम सभी देख रहे हैं कलयुग का वो पड़ाव जहां हर मनुष्य विकार, व्यसन, अनेक प्रकार की बुराइयां और सबसे ज्यादा आज चरित्र से पतन हो गया, इसीलिए मानव की गिरावट हो गई। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? तो कहते हैं दो शब्द हैं, आध्य प्लस आत्मा। यानी ये वो समय है कि जो अपनी आत्मा को अच्छी रीति से स्वयं का निरीक्षण करना, खुद को ऑब्जर्व करना, स्वयं के गुणों को पहचानना, स्वयं की शक्तियों को जागृत करना और उन शक्तियों को जागृत करके समाज सेवा में लगाना, वो कहते आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता आत्मा को जानना और पिता परमात्मा के साथ हमारे संबंध को बढ़ाना। लेकिन कई बार आध्यात्मिकता और धर्म को एक कर देते हैं। धर्म अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। धर्म सबका अलग अलग है, हिंदू धर्म है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सभी अलग अलग धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अपनी जो भी मान्यता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता वो चीज है जो हमारी मन की शक्ति को जागृत करता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे अंदर सकारात्मकता को लेकर के आता है। आध्यात्मिकता वो चीज है जो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसका एक सुंदर समन्वय समझ में आता है। कई बार हम देखते हैं आज के समाज में, हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं, बहुत अच्छी डिग्रीज देते हैं और उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम अपने बच्चों को, हम अपनी समाज में आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिकता से भरपूर नहीं करते। कई बार हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, उनके दो बच्चे थे, तो पेरेंट्स ने बचपन से ही कहा कि बेटी मेरी मेडिकल लाइन में जाएगी और बेटा मेरा यूपीएससी एग्जाम पास करेगा। समय ऐसा आया कि उनकी जो डॉटर थी उसने 7 बार अटेम्प्ट किया लेकिन वो फेल हो गई और 8वीं बार उसने सुसाइड कर लिया। जब भाई बुलाने गया बहन को तो देखा बहन ने सुसाइड कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आध्यात्मिकता वो चीज है, वो हमें सिखाती है कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति में हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं और अपने मन को शक्तिशाली बना करके उस परिस्थिति में कैसे हम अपने आत्मविश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, ये आध्यात्मिकता सिखाती है। कैसे हम अपने विल पावर को जागृत करें, ये आध्यात्मिकता सिखाती है। इसीलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर एक वाक्य कहा गया, बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड। कुछ नहीं, आध्यात्मिकता को अपना करके आप अपने मन के मालिक बनो तो सर्व समस्याओं को, अपनी भावनाओं को, सर्व परिस्थितियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको पार कर सकते हैं, हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, हर हाल में खुशहाल बना सकते हैं। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, दुआएं दो दुआएं लो। अक्सर हम क्या कहते हैं, हम तो इनको दुआएं देते हैं लेकिन ये तो कभी हमारे लिए अच्छा सोचते ही नहीं है। लेकिन आप जिसको जैसा दोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी एक स्पिरिट शब्द है कि जैसे हम दूसरों को दुआएं देंगे आपको दुआएं मिलेगा, हम दूसरों को सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा। इसीलिए जितना हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करेंगे और हम इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में देखो, इस आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हमारी महान विभूतियां आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने न जाने कितनी आत्माओं को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने विचारों से लाभान्वित किया है। तो ऐसी महान विभूतियों का स्वागत करने के लिए, स्वागत सम्मान करने के लिए मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, सम्माननीय आदरणीय मेहमानों का सर्वप्रथम शॉल पहना करके, तिलक लगा करके और अंग वस्त्र पहना करके बुके के द्वारा स्वागत करेंगे और इस स्वागत में आपकी मंद मंद तालियां बजती रहे। सर्वप्रथम परम आदरणीय मनोरमा दीदी जी जो प्रयागराज की धरनी से हमारे बीच में है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ताली बजाते रहे। राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, आचार्य श्री महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर जी महाराज जी, आपका भी स्वागत हो रहा है। स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज सुंदर समागम है प्रभु के परवानों का, प्रभु के रहनुमाओं का। आज अपने ही घर में, प्रभु के घर में आप पधारे, प्रभु के घर में आप पधारे। आपका ही परिवार है, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर, वरदानों की इस पावन भूमि पर आप सभी महानुभावों का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। अभी स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे मधुबन के ही समर्पित भाई जो कि परमात्मा ने इन सभी भाइयों को हर आत्मा को बहुत सुंदर विशेषताओं से नवाजा है, ऐसे ही हमारा मधुर वाणी ग्रुप है जो अपने मधुर शब्दों को अलंकित करके एक माला बना करके और अपने सुंदर मन की रचना के द्वारा सुंदर सुंदर गीतों की रचना करके जैसा समय जैसा स्थान जैसा कार्यक्रम ऐसे सुंदर गीतों की रचना करते हैं हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भाई, नितिन भाई, गोविंद भाई, वीरेंद्र भाई, आप सभी से अनुरोध है सुंदर गीत के द्वारा आप सभी का स्वागत करने के लिए आपका मन आतुर है। आपसे भी मेरा अनुरोध है मंच पर आकर सभी को अपने सुंदर गीतों के शब्दों के सज्जा के द्वारा सभी का स्वागत करेंगे मधुर वाणी ग्रुप।
ओम शांति। एक बार सभी सास्वर संवेद स्वर में बन बोले ओम शांति। अरावली आबू का यह दिव्य मंच इन महान विभूतियों से सजा है, हम सब का मन अति प्रसन्न हो रहा है। दिव्य मंच पर पधारे प्यारे संत जन, हो रहा है अति प्रसन्न एक एक मन। धन्य हो गई धरा, धन्य हो गई धरा, गा रहा गगन, खिल उठे चमन चमन, भैंस पड़े सुमन, खिल उठे चमन चमन, भैंस पड़े सुमन। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना और सबका स्वागत।
अध्यात्म के संसार में आए प्रभु प्यारे हैं, अध्यात्म के संसार में आए प्रभु प्यारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, अध्यात्म के संसार में आए प्रभु प्यारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं। अरावलियाचल में आबू महातीरथ है, आए भगवान यहाँ आया भागीरथ है, ओ अरावलियाचल में आबू महातीरथ है, आए भगवान यहाँ आया भागीरथ है, छिंदवाड़ा गुरु शिखर अचलगढ़ दिव्य नजारे हैं, छिंदवाड़ा गुरु शिखर अचलगढ़ दिव्य नजारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं। सजता अंबर ज्योतारों से, ज्ञान सरोवर सजा है ऐसे प्रभु प्यारों से। ओ मूर्त मंदिर सजता अंबर ज्योतारों से, ज्ञान सरोवर सजा है ऐसे प्रभु प्यारों से। आप आए अपने घर में प्रिय अतिथि हमारे हैं, आप आए अपने घर में प्रिय अतिथि हमारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं। अध्यात्म द्वारा मानव जीवन उत्थान है, अध्यात्म से ही होना जग का कल्याण है। ओ अध्यात्म द्वारा मानव जीवन उत्थान है, अध्यात्म से ही होना जग का कल्याण है। अध्यात्म से ही चमके भारत भाग्य सितारे हैं, अध्यात्म से ही चमके भारत भाग्य सितारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं। अध्यात्म के संसार में आए प्रभु प्यारे हैं, अध्यात्म के संसार में आए प्रभु प्यारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं। अध्यात्म के संसार में आए प्रभु प्यारे हैं, अध्यात्म के संसार में आए प्रभु प्यारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं, प्यारे प्रभु के प्यार में प्रिय आप पधारे हैं।
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मधुर वाणी ग्रुप का अभिवादन करेंगे। बहुत सुंदर, आप सभी का बहुत ही सुंदर रीति से स्वागत। अभी सबका स्वागत करने के लिए डांस के द्वारा स्वागत करने के लिए कुमारी हम सबके बीच में आएंगी और डांस के माध्यम से आप सबका स्वागत करेंगे। पटेल नगर ग्रुप
शुभ स्वागतम।
बहुत सुंदर दोनों कन्याओं ने बहुत सुंदर आप सभी का स्वागत किया। मुबारकपुर दिल्ली से दोनों कन्याओं ने आप सभी के लिए सुंदर डांस तैयार किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करेंगे। और कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम शंख नाद करते हैं, तो हमारे बीच में त्यागी जी महाराज शंख नाद करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है शंख नाद करके आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अलौकिक वातावरण हो गया। अभी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बुलाना चाहती हूं राजयोगी ब्रह्मा कुमार तपस्वी मूरत, ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, मुख्यालय संयोजक धार्मिक प्रभाग माउंट आबू। आप सभी रामनाथ भाई से भली भांति परिचित है, लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहती हूं कि आप बाल्यकाल से ही प्रभु प्रिय और भक्ति का खूब आनंद लेते थे। इस राह में चलते चलते अपनी पढ़ाई पूरी की और इस ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव हुआ और इस मुख्यालय के साथ आप जुड़े। पिछले 50 वर्ष से आज ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में आप अपनी मधुर वाणी के द्वारा लाखों आत्माओं को लाभान्वित कराया। मैंने जहां तक अनुभव किया है कि 365 दिन में से 300 दिन आपके ऐसे होते हैं जो मानव सेवा के लिए हैं, विश्व सेवा के लिए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपसे वंचित है। आप बहुत सुंदर योग, आप बहुत सुंदर क्लास, आप बहुत सुंदर धारणा और बहुत सुंदर मैं की पहचान विषय पर अपना अनुभव सुनाते हैं और आपकी वाणी से, आपकी ओजस्वी वाणी से लाखों आत्माएं लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे हमारे अति प्रिय रामनाथ भाई जी से अनुरोध करती हूं कि हम शब्दों के द्वारा हमारे महान विभूतियां जो यहाँ उपस्थित है इन सब का शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे आदरणीय रामनाथ भाई जी।
परमात्मा के स्मृति में हम ओम शांति कहते हैं, ओम की ध्वनि भी करेंगे, फिर शंख ध्वनि के द्वारा गायत्री मंत्र सुनेंगे, ओम शांति की ध्वनि लगाएंगे। शांति ही ओम, शांति ही ओम, शांति ही। सनातन संस्कृति के अनुसार शंख ध्वनि को बहुत बड़ा महत्व है, तो हम सभी सनातनी है। सनातन संस्कृति की परंपरा ही बहुत समय से चल रही है। आज आप और हम सभी इस भव्य सभागृह में उपस्थित हुए हैं। क्यों उपस्थित है? कुछ लक्ष्य लेके आए हैं, इसलिए आज सभा में उपस्थित सभी आदरणीय राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी जी, जो निर्देशिका है ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारीज माउंट अबू, आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी अध्यक्ष धार्मिक प्रभाग प्रयागराज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय संत समिति हांसी से आए हैं, आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती सचिव ऑल इंडिया साधु समाज भुवनेश्वर, श्री 1008 स्वामी राधवानंद जी महाराज करनाल, आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज पीठाधीश्वर पीताम्बरा विद्यापीठ मोदी नगर, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी गीताजी महाराज सूरत, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 प्रफुल्ल रंजन जी महाराज कलकत्ता से आए हैं, श्री ज्योति प्रसाद उन्याल जी महाराज मुख्य पुजारी यमुनोत्री धाम उत्तराखंड, स्वामी विष्णुगिरी जी महाराज सचिव ओडिशा साधु सद समिति भुवनेश्वर, स्वामी श्री श्री राजन जी महाराज मुख्य संचालक प्रज्ञाधाम पन्ना एमपी से, महामंडलेश्वर आचार्य डॉक्टर गोपाल खेत्री कलकत्ता, संत नानक दास जी महाराज प्रमुख कबीर पंथ बड़ी खाटू नागौर, आप सभी इस सभा में उपस्थित है और हमारे साथ बाकी अन्य सभी प्रभु प्रेमी परमात्मा के अनन्य स्नेही ऐसे महान आत्माओं को आज मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा लक्ष्य है कि भारत सनातन संस्कृति के अंदर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है, इस वसुंधरा पर एक परिवार है और एक मां बाप के हम बच्चे हैं, तो ये परिवार हो गया। किधर भी किसी भी कोने, सारे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी हो, सभी ब्रह्मांड से पधारे हैं। ये शरीर छोड़ने के बाद भी कहां जाएंगे? एक ही धाम है, परम धाम कहा। तो इस बुद्धि में रखकर सभी भले अलग अलग साधु संत अलग अलग पथाए हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, सबको इस विश्व में हरेक को स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। एक मंच पर हम सब एकत्रित होकर कि भारत एक है, तब कहा सारा विश्व मानता है भारत को, विश्व गुरु के रूप में देखता है, सारे विश्व को मार्गदर्शन देने वाला भारत है, अविनाशी है, अखंड है। तो हमें इतना गर्व होना चाहिए, हम कहां के हैं, हमारा पालनहार कौन है, हमको पढ़ाने वाला सिखाने वाला हम किस संस्कृति के हैं। तो ये समझ कर ये स्मृति में लाओ आप, तो लगेगा हमारा जीवन धन्य है। हमने देखा विदेश में बहुत हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए भाई बहन हैं, वो कहते हैं आप लोग बहुत धन्य हो, भगवान के धरती पर आप लोगों ने जन्म लिया। हमने कहा आप भी बहुत धन्य हो, ये सिर्फ भारत ही नहीं सारा विश्व है। तब कहा वसुधैव कुटुंबकम, तो सब आप भी धन्य हो, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। सारा विश्व आज कहता है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन, हमारी पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। धर्म का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, अलग अलग धर्म हो गए, आध्यात्मिकता अलग है। आत्मा इस शरीर में किसने प्रवेश किया, कौन शरीर छोड़ के गया, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा काला गोरा कौन कर रहा है। तब कहा कि ज्ञान चाहिए कि हम कौन, हमें पढ़ाने वाला सिखाने वाला हमारा सद्गुरु कौन, या आध्यात्मिक कौन सिखा रहा है हमको, कहां मिल रहा है। तो इस ज्ञान को समझकर सारे विश्व के अंदर हमने भी अपने जीवन में देखा बचपन से कि बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे हम कुछ पढ़ा सुना देखा। तो मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक बात समझ में आई, जो सारे आध्यात्मिक ग्रंथों में सारे विश्व के विश्वविद्यालय में कहीं भी मिला नहीं। एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो यह भौतिक है। तो आध्यात्मिक रूप में क्या है, हमारे पास भी दो शक्तियां हैं। सनातन संस्कृति के अंदर भी कहा प्रकृति और पुरुष दो शक्तियां हैं। तो हमारे पुरुष के पास भी दो शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। समझ बुद्धि के अंदर है, नहीं तो हम बहुत कुछ सुनते हैं पढ़ते हैं जानते हैं लेकिन समझ में नहीं आया। जब तक हमको समझ में नहीं आया तो आचरण में नहीं आता है। जो भी हम सुनते बहुत कुछ है, रामायण महाभारत गीता, आज किसकी कमी है भारत के अंदर, सारे विश्व में जो कितने ग्रंथ है, कितने शास्त्र है, कितनी यूनिवर्सिटीज है, और क्या चाहिए, किसकी कमी है। मनुष्य चंद्रमा तक गया और क्या चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उसको कहा सब कुछ है, कार है, मोटर है, मोबाइल है, सब कुछ है, एसी कमरा है, डनलप गद्दी है, नींद कहां मिलेंगी। तो कर्मों की गुह्य गति है। अगर आपने सुना हो महाभारत के अंदर एक ही कर्मों की गुह्य गति के उदाहरण है, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तब उन्होंने कहा, श्री कृष्ण खड़े थे, उन्होंने कहा बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, आज मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली, तीर चुभ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने पूर्व जन्म को देखिए, बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपकी मनसा थी हिंसा नहीं करना चाहिए, सांप को मारना नहीं बचाना है, आपने उठा के बाजू में किया, कहां गिरा, रस्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। एक ही दृष्टांत, बस कर्मों की गुई गति है। आज हम कहते संसार में दुख अशांति बीमारी ये सब क्यों, कर्मों की गति है, गुई गति है। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, इतनी स्वतंत्रता है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। तो ये फिर क्या है, ये मेरे कर्मों का फल है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो मुझे कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर तुरंत दिखाता आपको शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, कितने आर्टरीज ब्लॉकेज हुए है, दिखाता है, तब हमको विश्वास होता है, मैं समझता मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो विश्वास होता है। और विश्वास के बिगैर मनुष्य कोई भी चीज आचरण में नहीं लाता है, विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। तो यहां भी हम सदम चल रहे हैं, अभी तक ठीक है, कल कुछ हो पता नहीं है, कल क्या है पता है, हर एक को पता है। जब हम रात को सोते हैं आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्न कहां से आ रहे हैं, बाहर से तो नहीं आए, हमने किए हुए कर्म, आत्मा ने शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक एक एक सेकंड कुछ देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ घूम रहे हो, कुछ भी करो इस शरीर के द्वारा। अब मैं इधर बोल रहा हूं, बीच में खांसी हो गई क्या रिकॉर्ड नहीं होंगे? हर चीज रिकॉर्ड होती है, बाहर कहीं नहीं, कोई नहीं देखता है, हमारे अंदर रिकॉर्ड होता है। उसका प्रूफ स्वप्न बताता है। तब का मुखड़ा देख ले प्राणी, अपने अंदर देखो, मेरे अंदर किस प्रकार के स्वप्न कहां से आए? ये मैंने किए हुए कर्म है। तब सारे शास्त्रों में कहा, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। लेकिन तब आप और हम इधर इसलिए आए, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, स्वयं गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं स्वयं आता हूं। जब हर प्रकार का अधर्म दुख अशांति होती है, मैं स्वयं आता हूं। तो इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। स्वयं ईश्वर कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम, एक निराकार को सत्य का, वो जनन मरण में नहीं आता, अभोक्ता अजलमा। शिव के मंदिर में जाओ, लिंग है, निराकार है। तो वो निराकार परमात्मा साधारण साकार तन के द्वारा आकर के यह आध्यात्मिक ज्ञान देता है। तब इसका नाम रखा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और उनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। ये भी बिजनेसमैन थे, संसारी थे, उनके तन में आकर के यह आध्यात्मिक ज्ञान का बीज बोया। तब सारे ब्रह्मांड का रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान उनको सुनाया, तब उनका नाम हमने और किसी ने नहीं रखा, उस परमात्मा ने रखा कि ये प्रजा का पिता है, ब्रह्मा है, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान जानता है। उनके द्वारा जिनको ज्ञान मिला तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। संस्था का नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज देखेंगे आप कम से कम 50,000 बहने माताएं भाई होंगे जो स्व इच्छा से समर्पित हुए ईश्वर की सेवा में। सारे गांव गांव में कोने कोने में जाकर सेवा कर रहे, आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के हम कहते हैं सत्संग से सदगति होती है, तो असत्य संग भी है। प्रश्न आएगा, सत्संग क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? आत्मा सत्य है, अविनाशी है, शरीर आज है कल छोड़ देना है। तो ये आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान जहां मिलता है, उससे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है। जैसे मां को हम गुरु कहते हैं, मां सिखाती बच्चे को, दो हाथ है एक ही जैसे है। हां मैं इस हाथ से खाता हूं, मुझे मेरी स्वतंत्रता है, मैं जैसे चाहे करूं। हां खा सकते हो, लेकिन दूसरे क्या कहेंगे? देखो अगर कोई इस हाथ से खाता है, अरे इस बच्चे को मां बाप ने सिखाया नहीं है, दोषी कौन? मां बाप। अगर आज मैं कोई गलत काम करता हूं, कौन दोषी? अरे भगवान ने इस बच्चे को सद्बुद्धि नहीं दिया है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान चाहिए। मन है, मन घोड़ा है, मन चंचल है, मन तूफान है, मन को कौन रोकेगा? तब कहा मन जीत जगत जीत का, मन को कौन जीतेगा? आप में से कोई बता सकते हो? सोच लो, ये मन चंचल है, इनको देखते मुझे विचार आएगा, लेकिन मन को कौन रोकेगा? तो वो ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में का बुद्धि है, समझ है। आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के बाद समझ में आया, हां ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं बोलना है। कौन पढ़ाएगा आज के दुनिया में? मोबाइल में क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कौन रोकेगा आपको? जिस बुद्धि के अंदर ये सत्संग से जो ज्ञान सुना, तब का समझदार है। तो समझ आई तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अपने आप को समझाता है। इसलिए ब्रह्मा कुमार इसके अंदर एक स्लोगन है, स्व परिवर्तन। औरों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, स्वयं को समझाइए, स्वयं को देख लीजिए। इस लक्ष्य को लेकर आज ये भव्य समारोह तैयार किया है कि साधु संतों के पास भी बहुत ज्ञान है, इन्होंने बहुत तपस्या किया है, व्रत किया है, जप किया है। हमने सुना एक बहन है, उन्होंने नवरात्रि पर 9 दिन तक
सिर्फ नीम का जूस पिया और उनको साक्षात्कार हुआ कि प्रजापिता ब्रह्मा खड़ा है, ये ज्ञान देगा आपको। और उनको उसके बाद शिवरात्रि के समय पर उनको बुलाया, कहा आप ओपनिंग करने आओ मेले का। गई, अरे इनको तो मैंने सपनों में रात को देखा था पूजा करते समय, सारी रात 9 दिन तक जागृत जागरण करती थी, तब देखा, इनको देखा था, ये कौन? तब कहा ऐसे साधु समाज, इन्होंने संतों ने महात्माओं ने तपस्या किया है, पवित्र जीवन है, स्वच्छ अन्न है, जैसा अन्न वैसा ये तन बनता है, अच्छे ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो बुद्धि के अंदर भी यहां बैठे हुए भी उनके विचार शुद्ध वातावरण, ये भी एक कुंभ है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध संकल्प है, किसी के अंदर दुनिया का समाचार नहीं है, इधर कोई दुनिया के विचार नहीं है। तब इस स्थान को रखा ज्ञान सरोवर है, तो एक शब्द ऐड करो, ज्ञान मान सरोवर है। ये ज्ञान मान सरोवर में आप शांति से बैठकर एक 2-3 दिन, 2 दिन प्योर मोबाइल को अगर आप बंद करके, जो साधु से इतनी मेहनत करके कहां कहां से आए हैं, कितनी मेहनत किया, आप पूछेंगे एक एक बहनों ने इतने फोन किया एक एक को लाने के लिए, भाई जी ये स्वामी जी आएंगे, इनको आप ऐसे करना, इनको बुलाना ही है, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है, बहुत मेहनत से एक एक को चुन करके सारे भारत से आपके सामने रखा है। क्यों? इस ज्ञान मान सरोवर में आपको और हमको ये प्रसन्न और पवित्र बनाने के लिए। अगर हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं, अपने आप नहीं मिलेगी, स्वच्छता पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जहां पवित्रता नहीं है, जहां सुख और शांति आप चाहो मिल सकता है? आप पूछ लीजिए, आज आप 2 दिन से सुनेंगे, जीवन में रहते हुए ग्रस्त आश्रम हमारे सनातन संस्कृति का मूल है, पवित्र ग्रस्त आश्रम है, ग्रस्त में रहो, स्वच्छता ही पवित्रता है, शारीरिक स्वच्छता मानसिक स्वच्छता, किसी को देखो ये हमारे ही है, पराये कोई नहीं है, ये भाव रख करके अगर हम संसार में चलते हैं, तब जो हमारा लक्ष्य है सनातन का कि वसुधैव कुटुंबक, हम सब एक है, एक दूसरे से मिल के चलते हो, दृष्टि से दृष्टि मिलाते हो, यहां कोई दुश्मन नहीं है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारे ही है। हाँ, हर एक का विचार आचरण व्यवहार खान पान अलग हो सकता है, एक ही हाथ है, ये 5 अंगुली एक जैसा नहीं है, एक मोटी है एक बारीक है, एक गुलदस्ते में देखो फूल भी चाहिए पत्ते भी चाहिए, ये सभी मिलकर, तब कहा सभी मिलकर एक सनातन संस्कृति है, ये अलग अलग नहीं है, इसलिए हम सभी सनातन संस्कृति वाले एक मंच पर एक साथ रहो, कहीं भी जाओ, हम कौन, एक लक्ष्य रखो, हम सनातन संस्कृति के हैं। इसलिए आप सबका पुनः बार बार स्वागत करता हूं, आप आए, आपका घर भगवान का घर अधिकार है, आप कहते हो मेरा घर है, आप किसी के घर में नहीं है, भगवान हम सबका माँ बाप है, तुम्हें वह माता पिता तो मैं कहते हैं, हम उस माँ बाप के घर में, आपका घर है, आराम से रहो, अच्छी तरह से सुनो समझो, और आप भी सुनो औरों का भी उद्धार करो। तब कहा सर टू ह्यूमैनिटी सर टू गॉड, भगवान की सेवा क्या कर सकते हैं, उनका ज्ञान सुनकर अपने आचरण में लाना, लेकिन सुनकर सिर्फ सुनाना नहीं। तब कहा शेयर योर एक्सपीरियंस, अनुभव सुनाइए, हमने यहां जाके क्या प्राप्त किया, क्या मिला हमको। आपको एक, अगर एक मिनट लेता हूं, एक बात बताता हूं प्रैक्टिकल, एक बहुत बड़ा हिंदू महासभा का अध्यक्ष है, उनको निमंत्रण देने गए, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत थका हुआ हूं, कहीं से बाहर से आए थे, तो एक भाई को मिलने गया था निमंत्रण देने, उन्होंने कहा ठहरो मैं अभी आता हूं, 2 घंटा दिल्ली में कड़ी धूप में खड़ा किया, आता हूं अभी आता हूं, 2 घंटे तक आए नहीं, तो क्या थक करके चला जाएगा, 2 घंटे के बाद देखा बाहर से अंदर इधर है खड़ा है, स्वामी जी मुस्कुराते हुए हंसते हंसते वही चेहरा, स्वामी जी मैं आपको निमंत्रण देने आया था, तो देखा 2 घंटा कड़ी धूप में खड़ा करने के बाद भी इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट, वो बोल कहां से आई, कौन पढ़ाता इसको, मुझे जरूर जाके देखना चाहिए। और यहां आकर के उन्होंने अपना अनुभव बताया, भगवान ऐसे बच्चों को तैयार करता है ना, कौन पढ़ाता है, तब का इसका नाम रखा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्वयं ईश्वर पढ़ाता है। मुझे आपको वो भी बताने में खुशी हो रही है, हम गए थे पूरी जगन्नाथपुरी में, शंकराचार्य जी से मिले, उन्होंने मुझे कहा देखते ही आग और कपूस दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। हमने कहा स्वामी जी आप ही बताए कि मैं देख रहा हूं ये संभव नहीं है, लेकिन हमने कहा ये भगवान का चमत्कार है, कहते मुझे जरूर माउंट आबू आना है और देखना है ब्रह्मा कुमारी के अंदर पवित्रता कहां से आई। आग और कपूस दोनों एक साथ गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहे, ये सनातन संस्कृति का फाउंडेशन है। तब उन्होंने हमको कहा मुझे भी आकर के यहां देखना है, तो तब का हम कहां बैठे हैं, ऐसी एक यूनिवर्सिटी है ये, स्वयं भगवान चलाता है। कौन भगवान, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सदा याद रखो, भगवान कहते हैं हम, भगवान कौन, ईश्वर कहते हैं ईश्वर कौन, कहां है वो। तब कहा बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि के अंदर ज्ञान सुना याद है, बच्चा देखो 1 साल पढ़ता है सब सुनता है, 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछूं लिखता है, कैसे लिखता है, समझदार, सब रिकॉर्ड करता है। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है अच्छी तरह सुनो, बहुत अच्छी बात नोट करो, ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में सत्य त्रेता द्वापर कलयुग अंत तक दोबारा नहीं मिलेगा। तब ये ज्ञान वो है स्वयं रुद्र भगवान आके देता है, इसको अग्नि कहा, इसको गंगा जले पाप को धोने वाला ज्ञान है। इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, 2-3 दिन बहुत आराम से आपके घर में रहेंगे, इसका मैं शुभकामना रखता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामनाथ भाई जी का, आपने बहुत सुंदर विचार, प्रैक्टिकल और वास्तविक विचार हम सबके समक्ष रखे। आपकी कुछ बातें आपने तप के ऊपर कहा, तो कहते हैं तप ही सर्व समस्या का समाधान है, तपस्या ही सर्व समाधान, सर्व समस्याओं का समाधान है, तप ही परमात्म मिलन का रास्ता है, तप ही परमात्म मिलन का रास्ता है, और तप ही हमारे जीवन को निखारता है, तप ही हमारे जीवन को निखारता है। एक बात भाई जी ने बहुत सुंदर बताई कि मोबाइल की बात कही, तो मुझे एक बात याद आई कि वर्तमान समय की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, कि आज डाटा सस्ता हो गया, आटा महंगा हो गया, ये हमारी विडंबना है। तो ये बहुत सुंदर विचार आपने हमारे बीच में रखा, और हमारे बीच में इस स्टेज की शोभा को शोभायमान करने के लिए हमारी परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, आपका शॉल पहना के, बैज के द्वारा, तिलक के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा आदरणीय दीदी जी का स्वागत सम्मान करें, स्वागत सम्मान करें, और आप करतल ध्वनि का साथ देते रहें, ताली बजाते रहें। आदरणीय दीदी जी का स्वागत सम्मान हो रहा है। आप ज्ञान सरोवर निदेशिका हैं, अभी हुबली की निर्मला बहन और भुवनेश्वर की लीला दीदी जी से हमारा अनुरोध है मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें। करुणा बहन से भी मेरा अनुरोध है। अभी हम ऐसी शख्सियत को यहां बुलाना चाहते हैं, प्रतिभावान, ओजस्वी, तेजस्वी अपने अलौकिक आभा मंडल से ओतप्रोत करने वाली ऐसी महान विभूति हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज जो ये सम्मेलन होने जा रहा है उस सम्मेलन का लक्ष्य और उद्देश्य एम और ऑब्जेक्ट्स हम सबके बीच में रखेंगे। मनोरमा दीदी जी जो कि धार्मिक विभाग की आप धार्मिक प्रभाग के आप अध्यक्षा हैं और आप प्रयागराज की पावन धरनी से हम सब के बीच में अपने अनुभव बांटने के लिए यहाँ पधारे हैं। और साथ साथ इतना कहना चाहूंगी, आप ज्ञान का प्रयोग हो, आप ज्ञान का प्रयोग हो, राग हो प्रयाग का, राग हो प्रयाग का, आप राग है वैराग्य का, आप राग है वैराग्य का, प्रयास हो आप त्याग का, प्रयास हो आप त्याग का, वाणी का कौशल हो आप, वाणी का कौशल हो आप, हो बुद्धि की विशालता, लेखने की धनवान है आप, लेखने की धनवान है आप, संकल्पों में दृढ़ प्रतिज्ञा है आप, संकल्पों में दृढ़ प्रतिज्ञा है आप, कुंभ की कमाल हो आप, कुंभ की कमाल हो आप, मुझे सुनाते हुए हर्ष हो रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की एक बहुत सुंदर मेले का आध्यात्मिक मेले का आयोजन परम आदरणीय मनोरमा दीदी जी ने प्रयागराज में किया। लाखों नहीं करोड़ों आत्माओं ने वहां पर जाकर के इस ज्ञान उस नदी में तो स्नान किया ही किया संगम में, लेकिन इस आध्यात्मिक मेले में भी जाकर के लाखों आत्माएं करोड़ों आत्माएं लाभान्वित हुए। और ये सेवा का पूरा कार्यभार हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी जी ने संभाला। तो एक बार आदरणीय मनोरमा दीदी जी के लिए मैं चाहूंगी जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिवादन हो। और दीदी जी आज हम सबको इस संस्था का लक्ष्य और उद्देश्य हम सबके बीच में रखेंगे।
ओम शांति। बड़ा मनोहारी दृश्य था ये हमारा संत समाज, जो हमारे समाज का रहनुमा है आज एक साथ मंच पर है, जिनकी सुबह ईश वंदना से होती, जिनके मन के ख्यालात चलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःभाग् भवेत्। संपूर्ण समाज के लिए निरंतर शुभ भावना शुभकामना से ओतप्रोत हमारे आचार्यगण, हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य संतवृंद, कथा का श्रवण लाभ देने वाले कथावाचक ज्योतिषाचार्य, अद्भुत गुलदस्ता है आज मंच के ऊपर, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ज्ञान सरोवर परिसर की निर्देशिका माननीय स्नेहमयी आदरणीय प्रभा जी, भ्राता रामनाथ जी, उनके बारे में क्या बताऊं, सुन चुके हैं आप, हमारे सभागार में उपस्थित समस्त भाइयों एवं बहनों। भाई रामनाथ जी आपका स्वागत कर रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, बड़े ध्यान से सुन रही थी तो लगा कि अच्छा है ये सब कुछ बता दें, मुक्ति मिल जाएगी। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरा नाम पुकारा गया बहन राजश्री द्वारा, तो कुछ तो कहना ही है। और कहना जो कुछ है वो सब आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ज्ञान का अभाव है। मंच पर बैठे हुए हमारे विद्वज्जन, जिसमें से हमारे बहुत से संत ऐसे होंगे जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया होगा, बहुत से संत ऐसे होंगे जिन्होंने उपनिषदों पर कमांड करके रखा होगा। नो डाउट ज्ञान का कोई अभाव नहीं। और जो सामने सभा में बैठे हैं, निसंदेह ये इन रहनुमाओं की वाणियों का लाभ समय समय पर लेते रहते हैं। फिर भी यहां आवाहन हुआ। अभी कुछ समय पहले भी नीचे संत सम्मेलन हुआ था, तो इनको देखकर मन के अंदर बड़ा सुकून, बड़ी शांति। और सबसे बड़ी बात जो भ्राता रामनाथ जी ने कहा, हम सनातन हैं, सनातनी संस्कृति के ये रहनुमा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कलयुग के अंदर एक महावाक्य दिया गया है, संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग के अंदर हम जितने संगठित रहेंगे उतना ही अपनी सनातन की ध्वजा को फहराने में कामयाब होंगे। इस समाज में समय के प्रभाव का जो असर है आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। इस समाज के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से हम नीचे उतरते चले आ रहे हैं। जो हमारे सनातन संस्कार थे, जो हमारी माताएं और बहनें घूटी के साथ बच्चे को पिलाया करती थी, आज एक जुमला बोलते हैं वक्त नहीं है। बच्चे को भी घुटी पिलाने का वक्त नहीं, संस्कार देने का वक्त नहीं है। तो आज हम अपने घरों में राम और लक्ष्मण को नहीं पल्लवित कर पा रहे हैं। यहां जो ये सम्मेलन रखा गया कि आध्यात्म के द्वारा मानवता का उद्धार हो, कारण हमारे आदर्श खो क्यों गए। आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, करोड़ों भारतीयों ने नहीं वहां पहुंचे हैं तो मोबाइल को कंटिन्यू देखा है, एक एक पल जिया है कि कैसे माननीय लोगों ने उसकी स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। पूरा हिंदुस्तान उमड़ा पड़ा था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की केवल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा थी। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें ये सिखाता है कि हम केवल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा न करें, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उन मर्यादाओं को अपने हृदय में पल्लवित करें, पुष्पित करें और उन मर्यादाओं को उतारें। मूलतः अध्यात्म का तात्पर्य ही यह है। हमारी बहन भी कह रही थी अध्ययन प्लस आत्म अध्यात्म है। हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, एक्चुअल स्पिरिट हमारे अंदर तभी जागृत हो सकती है जब हम अध्यात्म को अपनाते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव, आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव जन जन में जागृत हो। भारतीय वाङ्मय दर्शन में अनेकों विधाएं, अनेकों प्रथाएं अनेकों संस्कृतियों का समागम, किसी को देखिए एको अहम द्वितीयो नास्ति, हमारे परम आदरणीय आदि शंकराचार्य ने एक नारा दे दिया था। उसके पहले आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती थी, देव विग्रह की उपासना होती थी, तो जब एक आत्मवाद आया लोग उसकी ओर भी बढ़े। जैसे श्री विग्रह की उपासना करते हैं ऐसे उधर भी उन्होंने देखा, पता लगा बीच में सांख्य दर्शन आ गया, द्वैत आया, विशिष्टा द्वैत आया। लेकिन भारतीय जनमानस ने हर एक को पूरी तरह सम्मान दिया, उसको पल्लवित करने में, उसको पुष्पित करने में पूरा सहयोग दिया। और ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हम सो रहे हैं, कह सकते हैं? भारत को आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ छूट रहा है। जब हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे देवालय खंडित किए गए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, पुनः निर्माण हुआ। लेकिन जब हमारी संस्कृति को छेड़ा गया, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब लॉर्ड मैकाले ने मैक्स मूलर को यहां के वेद भेज दिए थे कि वो ऊपर का कलेवर वही रहे, अंदर बदल दो, 36 भाषाओं का विद्वान था, हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ हुई। आज पुनः उसको परिशोधन करने में, छानने में पूरा संत समाज लगा हुआ है, अनेकानेक शाखाएं लगी हुई हैं, जगाने का प्रयास जारी है। लेकिन जब दिए में घृत कम होने लगता है परमात्मा स्नेह का, तो परमात्मा को आना पड़ता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए उस जगत नियंता को आना पड़ा, और आकर के नव सृष्टि के सृजन का शंखनाद करना पड़ा। अगर चाहते हैं कि हालात बदलें तो रवैयात बदलें, ख्यालात बदलें, केवल चाहने से नहीं होगा, हमें अपने चिंतन की धारा को बदलना होगा। मानवता का उद्धार तभी संभव है। हम इस संसार में आए, हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में सूत्र मिले, ऐसे सूत्र जीवन को बदल दें। आप मेहमान हैं, हाँ क्षमा कीजिएगा, आप भी मेहमान हैं। यहां आए हैं और आप कहेंगे हम तो माउंट आबू गए थे, और 3 दिन के लिए मेहमान नवाजी में रहे, मेहमान थे। तो जब मेहमान होते हैं तो हम बड़े संयत होते हैं, जब हम मेहमान होते हैं तो हमारी अपेक्षाएं नहीं होती किसी से, हम कहते हैं जो मिल रहा है बहुत बढ़िया, व्यवस्था जो मिली बहुत अच्छी, जो हो रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि मेहमान है। यहां भगवान ने सिखाया, अरे इस दुनिया में भी तो मेहमान हो, इस दुनिया में क्यों अपेक्षाओं का शोर है, इस दुनिया में संग्रह करने का शोर क्यों है। आप महान भी हो, भगवान की सृष्टि के आप कोहिनूर हो, भगवान ने जो आपको दिया वो किसी को नहीं दिया, जो मुस्कुराने की अदा आपको दी है जानवरों को तो नहीं दी, जो दिव्य विवेक आपको दिया है औरों को तो नहीं दिया। तो उस दिव्य विवेक का प्रयोग करके नेतृत्व की बागडोर संभालें, नायक बने। एक नायक सब तरह के रोल करता है, इसी तरह आप इस मनुष्य सृष्टि में सब तरह का रोल करते हुए, कोई कहीं जो भी बैठे हैं, इनमें बहुत से प्रशासनिक क्षेत्र में होंगे, बहुत से व्यापारिक जगत में होंगे, सब कुछ करते हुए भी घर में सुबह सुबह कुछ ना कुछ करते जरूर है, लेकिन वो करके वहीं छोड़ देते हैं। जब हम दुकान पे आते हैं तो निखालिस व्यापारी बन जाते हैं, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो निखालिस अधिकारी बन जाते हैं। नहीं, वहां भी उस मानवीय परिधान को छोड़ क्यों देते हैं? जो सामने आया हुआ ग्राहक है वो भी उस जगत नियंता की संतान है, जो सामने आया हुआ कर्मचारी है वो भी तो उस परमात्मा की संतान है, मगर हमारा एटीट्यूड उस समय वो नहीं होता। फर्क इतना ही है हमारी और तुम्हारी जिंदगी में, फर्क इतना है, किसी शायर ने लिखा है कि तुम तलवार के पीछे हो, हम तलवार के आगे। आप आईएएस हैं तो आप कुर्सी पर मेज के पीछे हैं और वो मेज के सामने हैं, लेकिन है तो वो भी इंसान ना। तो व्यवहारिक पटल पर मानवता का प्रेम बांटने के लिए, व्यवहारिक पटल पर धर्म का वो संदेश जहां कहा गया दया धर्म का मूल है, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। वो करुणा, वो क्षमा, वो प्रेम, वो दया, वो आनंद की पूंजी जो उस जगत नियंता ने आत्मा के आंतरिक गुणों के रूप में आपको प्रदान की, अथवा जब आप परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, शनह शनह आपके अंदर ये दिव्यता प्रवेश करती जाती है। आप इसे वितरण करें, यहां से जाने के बाद जन जन को यही पैगाम पहुंचाएं, इसलिए हम सब यहां एकत्र हुए। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन, मिलते रहेंगे। अभी आप 3 दिन हैं इस परिसर में, बहुत कुछ बनकर मेहमान भी उठाएंगे और महान बनकर भी उठाएंगे, और जब जाएंगे तो घर वाले बनकर एक जगत नियंता के एक सूत्र में बंध कर जाएंगे। मैं वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी का, आपने सुंदर शब्दों की माला से हम सबको सुसज्जित किया, श्रृंगार किया कि किस तरीके से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। हम उनको जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मानने का तात्पर्य है कि उनके जैसे विचार, उनके जैसी धारणाएं, उनके जैसी सहनशीलता, मुख पे माधुर्यता, ये जो गुण है, उन गुणों को जीवन में अपने धारण करना ही श्री राम जी के आचरण पर चलना है। तो हम आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि महाराज जी का शॉल से, बैजेस से, तिलक से, पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। बहुत सुंदर शब्द हमारे बीच में रखे आध्यात्मिकता, तो आध्य प्लस आत्मा, यानी स्वयं का निरीक्षण करना, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना। तो जैसे आज हम देखते हैं कि आज का मानव सुख सुविधा साधनों से संपन्न हो गया, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एक्सटर्नल पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप कर ली। लेकिन मुझे याद कि एक व्यक्ति बहुत प्यासा था, बहुत प्यास लगी, उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जगह उसको सुराही दिखाई दी। जैसे उसने सुराही को देखा, उसका मन खुश हो गया कि कि मेरी प्यास मैं बुझा सकूंगा। वहां बहुत मेहनत करके उस सुराही को लेने पहुंचा और वहां पर पहुंच करके उसने उस सुराही में हाथ डाला तो उस सुराही में पानी नहीं था। वो निराश हो गया। आज की जनता, आज का समाज हम संतों से कुछ चाहता है, सुख सुविधा शांति प्रेम पवित्रता आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का आज वो चाहना रखता है। तो हमें एक ऐसी सुराही बननी है जो हमारा जीवन नैतिक मूल्य से भरपूर हो, हमारे जीवन के अंदर सुख शांति से भरपूर हो, ताकि हम दूसरों को दे सके। दुआओं से हम स्वयं को भरपूर करें ताकि हम दूसरों को दे सके। यही आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। इन्हीं विचारधाराओं को आगे रखते हुए हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथि के रूप में आचार्य महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर जी महाराज। आचार्य महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर जी महाराज दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से हमारे बीच में हैं। मैं आपके पर्सनालिटी को देखती हूँ कि आप इतनी आयु में भी एकदम एक्यूरेट अलर्ट पंक्चुअल, और जैसे कि मुझे कभी कभी ऐसे आभास होता है जैसे मैं आपकी सेवाओं को देखती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि शिव बाबा ने विशेष आपको संतों की सेवा के लिए ही निमित्त बनाया है। तो आप दोनों तरह का कार्य करते हो और आत्माओं को भी जगा रहे हो और विशेष अन्य साधु संतों को भी बाबा के घर से जुड़ा रहे हो। तो कमल किशोर जी का कार्य इतना अलौकिक है जो मैंने अनुभव किया कि कहते हैं किन्हीं दो ने निगाहें से देखा, एक ने देखा कीचड़ में खिलते हुए कमल को देखा और एक ने देखा चंद्रमा के लगे हुए दाग को देखा। तो मैं देखती हूँ कि इस कीचड़ की दुनिया से कमल की तरह कमल किशोर जी सबको कमल समान बनाने का महानतम कार्य करते हैं और कर भी रहे हैं, और बहुत सारे संतों को इस ईश्वर विश्वविद्यालय से आपने जुड़वाया है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज के इस समागम के संदर्भ में अपने विचार हम सबके समक्ष रखेंगे आदरणीय कमल किशोर जी महाराज। मंजू बहन और पार्वती बहन से अनुरोध है मंच पर आए।
सर्वप्रथम उस निराकार परमात्मा शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए और आप सभी उस ईश्वर की प्रिय संतानों को, विद्वत जनों को, प्रकांड विद्वानों को, संतों को, महात्माओं को, मंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वरों को, महामंडलेश्वरों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। मंच पर मनोरमा दीदी जी बैठी हैं, इनकी मधुर वाणी मैंने पहले भी सुनी कई साल पहले, आज भी सुनता हूं, मन के तारों को झंकृत कर देती है। परम तपस्वी परम आदरणीय राजयोगी रामनाथ भाई जी, जब कुछ कहते हैं तो लगता है कि अंतर मन से कहते हैं और हमारे अंतर मन को छूता है। ऐसे ही हमारे नारायण भाई जी हैं, राजेश्वरी बहन जी हैं। अभी भी राजेश्वरी बहन जी ने एक बात कही, खाली सुराही, सुराही के पास गए खाली। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद की अनुभूतियां चाहिए, सुख चाहिए। उसको पाने के लिए पहले वो धन के पीछे दौड़ता है, उन वस्तुओं के पीछे भागता है, लगता है कि सुख मिलेगा, टीवी खरीद ले, अच्छा सा मोबाइल मिल जाए, कार मिल जाए, कोठी मिल जाए, व्यापार बड़ा हो जाए, लेकिन सुख मृग तृष्णा की तरह दूर चला जाता है। सुराही वहां भी खाली है। फिर वो ढूंढता है सुख किसके पास आके, संतों के पास। और संतों के पास जब जाता है तो वहां भी देखता है कि सुराही खाली है। ऐसा कैसे हो गया? संतों के पास जाके सुराही खाली? अहंकार, संतों के बीच भी अहंकार, पद का अहंकार, मैं ऊंचा तू नीचा। आप देखेंगे चतुर्वेदी ऊपर, त्रिवेदी उससे नीचे, द्विवेदी उससे नीचे, वेदी उससे नीचे। ब्राह्मणों के बीच में भी भेदभाव, सिखों के गुरुद्वारे पहले एक हुआ करते थे, अब मजहबियों के अलग हो गए हैं, बड़ों के अलग हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? बुद्धों के बीच में भी कई तरह के अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। जैनियों में दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन इसलिए लड़ रहे हैं कि भगवान महावीर ने वस्त्र पहने थे या नहीं पहने थे, श्वेत वस्त्र पहने थे या दिगंबर सारी दिशाएं, या वो कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। मुसलमानों में चले जाएं तो वहां भी यही लड़ाइयां हो रही हैं, शिया सुन्नी की लड़ाइयां हो रही हैं। आगे 73 फिरके, उसके आगे 1472 फिरके। हिंदुओं में झगड़े चल रहे हैं, दिगंबर श्वेतांबरों में शादी नहीं करते, शिया मुसलमान जो है वो सुन्नियों में शादी नहीं करते, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते। तो सुराही तो खाली मिलेगी ना। हमारे यहां संतों के बीच में भी मैं स्वीकार करने की हिम्मत रखता हूं, ताकत रखता हूं, कहता हूं कि हम संतों के बीच में भी छोटा और बड़ा का भेदभाव है, नहीं होना चाहिए। मैंने वो भेदभाव जब देखा, यहां से पीछे 15वीं लाइन में बैठा था मेरी धर्मपत्नी, मेरी युगल गुरु माता अनीता मेरे साथ बैठी हुई थी। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, मनोरमा बहन जी कह रही थी उस समय कि हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए। मुझे लगा इनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति को तो वो अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति का अहंकार बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होता है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। हमने जाना कि इल्म से जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन जाना तो जाना कि कुछ भी ना जाना, कुछ भी ना जाना। संत सम अंत, दुख में सुख में, शोक में हर्ष में, मान में अपमान में, यश में अपयश में, हर स्थिति में जो आनंदित रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, संतुलित रहते हैं, वो होते हैं संत। और यहां संतों के आगे कोई बात हो जाए तो एकदम से क्रोध आता है। क्रोध आएगा तो फिर हम संत कहां के हैं? हमने यहां आकर सीखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर सीखा कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध को कैसे समाप्त करना है। जैसे गहन अंधेरा हो और आपको डंडे दे दिए जाए, इस अंधेरे को बाहर निकाल दो, निकाल सकते हो? आपको बंदूक दे दी जाए, निकाल दो, तोप दे दी जाए, अंधेरे को बाहर निकाल दो, क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या करना पड़ेगा? प्रकाश उत्पन्न करना पड़ेगा, दिया प्रज्वलित करना पड़ेगा, या फिर रोशनी का स्विच दबाना पड़ेगा जिससे रोशनी चारों तरफ आ जाए। रोशनी आएगी अंधेरा जाएगा, सूरज आएगा तो अंधेरा जाएगा। तो बहनों ने हमें बताया यहां पर कि आप अपने भीतर प्रेम को उत्पन्न करो, प्रेम को उत्पन्न करो, क्रोध का अहंकार अपने आप चला जाएगा। और वो चला गया, और वो चला गया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमात्मा आके सिखाता है, स्वयं परमात्मा, दूसरा तो कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी सिखा रहा है उसके भीतर भी सूक्ष्म अहंकार होता है कि मैं सिखा रहा हूं। और यहां पर आप पाएंगे हर बहन के हर भाई के चेहरे पे एक अद्वितीय मुस्कुराहट। आप कुछ भी उन्हें कहिए उन्हें बुरा ही नहीं लगता, एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे सदैव रहती है, प्रेम भरी मुस्कुराहट। और वो कहती हैं ये तो आपका अपना घर है, आप अपने घर में आए हैं, भगवान शिव के घर में आए हैं, परमात्मा के घर में आए हैं, ब्रह्मा के घर में आए हैं। इतना स्नेह, इतना प्यार, तो क्रोध के लिए जगह ही नहीं बचती, क्रोध के लिए जगह नहीं बचती। रामनाथ भाई अक्सर कहा करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मन और बुद्धि, भीतर विचार चलते रहते हैं मन के अंदर, इतने विचार चलते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या विचारों को कोई शांत कर सकता है? कोई विचारों को शांत कर सकता है? मन में कभी कोई विचार ना चले, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा हुआ है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। सन 1978 की बात है, 40 देश कैलिफोर्निया में, दादी जानकी जी को बैठा दिया गया, सर पे कंटोपा लगा दिया गया, यानी जिसे कहते हैं ईईजी की मशीन लगा दी गई। 40 देशों के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बैठ गए, अगर उंगली भी हिले या पलक भी झपके तो ग्राफ हिल जाए। ग्राफ हिलता है, आज भी ईईजी का ग्राफ हिलता है। और उस समय उन्होंने बोला दादी करें शुरू, दादी ने कहा दादी बैठिए शांत चित्त, ग्राफ एक मुर्दे की तरह जीरो लेवल पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह चलता चला जा रहा है। दादी से पूछा दादी ये आपने कैसे किया? दादी ने मुस्कुरा के जवाब दिया राजयोग से किया। और यही राजयोग तो यहां सिखाया जाता है, मन को कैसे वश में करना। अभी भाई ने कहा मन जीते जग जीत, मन को कैसे जीता जाए, मन के अंदर घूमने वाले विचारों को अगर हमने जीत लिया तो समझिए पूरी दुनिया हमने जीत ली। और ऐसी एक ही यूनिवर्सिटी, भाई साहब ने बताया अभी, एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व में जो ये सिखाती है सुख कैसे पाया जाए, आनंदित कैसे हुआ जाए, आनंद को प्राप्त कैसे किया जाए, मन को शांत कैसे किया जाए, प्रेम को कैसे पैदा किया जाए, क्रोध को कैसे समाप्त किया जाए। ऐसी सिखाने वाली पूरे विश्व में एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय, जिसके 9000 के ऊपर सेंटर और 50,000 से ऊपर समर्पित भाई बहने जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, तभी तो ये देते हैं हमें, क्या प्रेम बांटते हैं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, इनके पास प्रेम है तो इसलिए ये प्रेम बांटते हैं। और हर इंसान प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है। बहन जी ने एक बात और कही, शरीर का मन का आकर्षण होता है। अब एक प्रेमी और प्रेमिका के लिए दो शरीर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। भाई जी ने भी बताया कि पूछा गया कि पेट्रोल और अग्नि इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, यहां तो ब्रह्मा कुमार भाई और बहनें इकट्ठे रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, यहां आके देखो ना कैसे रहते हैं। शरीर और आत्मा या आत्मिक रूप से हम भाई भाई हैं, आत्मिक रूप से। और जब आत्मा आत्मा को देखती है तो जगत गुरु शंकराचार्य जी, एक बात बताता हूं आपको, काशी में जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, सुबह सुबह एक भंगी झाड़ू लगा रहा था, उनके चेलों ने कहा अरे भंगी दूर हट दूर हट, जगत गुरु भी बोले हटा भंगी परे हट, भंगी बड़े जोर से हंसा। जगत गुरु जी ने कहा ये हंसता क्यों है, क्यों क्यों भाई तू क्यों हंस रहा है। भंगी बोला महाराज जी आप शरीर को शरीर से दूर हटा रहे हो, शरीर को शरीर से दूर हटाना चाहते हो तो आप ही कहते हो कि शरीर नाशवान है, तो नाशवान से नाशवान की दूरी कैसी। और अगर आत्मा को आत्मा से कहते हो परे हटाओ परे हट, तो फिर कहते हो कि आत्मा एक है, आत्मा पवित्र है, उसे ना कोई काट सकता है ना अग्नि में जला सकता है। जब आत्मा को आत्मा से दूर करना चाहते हो तो फिर आत्मा से आत्मा की दूरी कैसी। यहां पर भी पवित्रता सिखाई जाती है, शुचिता सिखाई जाती है, भाई बहन से बढ़िया प्रेम कोई हो ही नहीं सकता। और वो प्रेम यहां सिखाया जाता है। सीखना है तो मैं आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भाई बहन, मेरे भाई बहन नहीं गए कभी सेंटर्स में, वो अवश्य जाएं सेंटर्स में और 7 दिन का कोर्स करें, फिर उन्हें एक आनंद मिलने लगेगा, धीरे धीरे स्वाद आने लगेगा। तब जब आप यहां आएंगे तो आपको लगेगा कि हां कि यहां बहुत कुछ है, जीवन में जो कुछ पाना था यहां आकर हमने पा लिया। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी पाएं, और संतों से भी अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है सबसे कि संत जन विद्वत जन आप खाली सुराही ना रहें, भरी सुराही रहें, प्रेम से भरी हुई, शुचिता से भरी हुई, अहंकार से समाप्त हुई, बिल्कुल अहंकार जिसमें ना हो, खालीपन ना हो, प्रेम लबालब प्रेम से आप संदेश जब लोगों को देंगे तो वैसा ही संदेश जाएगा जैसे एक दिए को प्रज्वलित कर दें तो चारों तरफ रोशनी फैलाता है, फूलों को देखें चारों तरफ सुगंध फैलाते हैं। वो ये नहीं कहते कि इस दिशा में नहीं जाएंगे तो इस दिशा में नहीं जाएंगे, फैलाएंगे। जिस तरह सूर्य सबको रोशनी देता है, जिस तरह से हवाएं सबको ऑक्सीजन देती हैं, जीने का साधन देती हैं, जल किसी तरह भेदभाव नहीं करता, उसी तरह से संतों को भी भेदभाव नहीं करना, ना आपस में ना किसी और के साथ। और यही संदेश यहां से लेकर जाना है। मेरे साथ पुकारेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार करें, धन्यवाद।
आचार्य महामल्लेश्वर श्री कमल किशोर जी ने बहुत सुंदर विचार हमारे बीच में रखे, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हम अभी आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का हमारा जो सत्र है ये सम्मान का सत्र है, और समय काफी तेजी से भाग रहा है, तो कुछ शब्दों में अपने विचार रखें। और कल से आप सभी को बहुत अच्छा चांस मिलेगा, समय मिलेगा, तो आप अपने विचार अच्छी तरह से रखेंगे। अभी समय काफी हो रहा है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विचार हम सबके बीच में रखें।
मूल मंत्र गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। ये आत्मा और परमात्मा का मिलने का एक केंद्र है, क्योंकि महापुरुष जो है उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के इस जीव को जागृत करने का कार्य किया। कबीर साहब महाराज भी कहते कि आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई और झाई में एक झाई दर्शे लखो कबीरा साई। क्योंकि बोलने वाला हमारे अंदर बैठा है। सब गट मेरे साइया खाली घटना कोई, बलिहारी वा गट की जागट प्रगट होए। जो आज हम यहां विराजमान है संत महापुरुषों की शरणागत के अंदर, इनका सिर्फ एक ही कार्य है कि उस बिछड़े हुए जीव को परमात्मा से मिलाने का है। सबके अंदर घट कोई खाली नहीं है, सबके अंदर पहले से विराजमान है, लेकिन इसको जागृत कौन करेगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। वो तो पहले हाजिर है, लेकिन मिलाने का कार्य किसने किया? इन महापुरुषों ने किया। जो इस ब्रह्म कुमारी मिशन के अंदर हम बैठे हैं, जो शांति का उपदेश है, जो प्रेम का उपदेश है, ये आज एक जगह नहीं है, सभी देशों के अंदर इस जन को जागरण करने का जो कार्य है। क्योंकि जब हम परमात्मा से मिलन हो जाएगा, भेद कब तक था? जब तक अंधकार था। और जब आपको ज्ञान हो गया तो सबके अंदर किसका रूप है? सबके अंदर तो आप ही तो बैठे हैं ना, कोई दूसरा तो है नहीं, एक ही स्वरूप है। जब वो ज्ञान हमारे को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? जब गुरुओं के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा उस आत्म कथा को, जब वो आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वीरो हम ना तुम दफ्तर, ना हम है चित में है तो चेला है, और जब शब्द के अंदर समा गए तो किसका रूप बन गया? गुरु का रूप बन गया। तो वीरो सब एक ही रूप से आए हैं, सब गट ओ साहेब सदगुरु बंदी छोड़, ओ परम पिता परमात्मा विराजमान है, लेकिन मिलाने का कार्य महापुरुष करते हैं। इसलिए गुरु जो है वो उच्च श्रोमणी आता है। क्योंकि आता है इसलिए क्योंकि आत्मा और परमात्मा मिलन कर देता है। और आज यहां इस मिशन के अंदर जो बैठे हैं, इन्होंने हमेशा ही शांति और प्रेम का, जैसे भिलनी माई थी उसको प्रेम था, और जब उसको प्रेम था तो राम जी सबसे पहले कहां पहुंचे? भिलनी के पास आए ना। और हुक्म किसका था? गुरु मतंग ऋषि का। जब जाते जाते गुरु ने वचन दिया कि राम आएंगे बेटा, इंतजार करना। लेकिन आज सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है? हम इंतजार नहीं कर सकते, बस आज ही आए और आज ही पा जाएं। अगर हम इंतजार कर लें, गुरु के वचन के ऊपर ठहर जाएं, चाहे उसमें वर्षों लग जाएं, लेकिन एक दिन राम आएंगे, और राम आएंगे तो आपका उद्धार होगा। तो इसी के साथ कल भी कार्य है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सत साहिब।
बहुत सुंदर विचार आपने हमारे बीच में रखे, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छे शब्दों में आपने सुनाया। अभी जिस पल का हमें इंतजार था, जिस वाणी को सुनने को हमें इंतजार था, ऐसे प्रभु परवाने, ऐसे प्रभु के विशेष चुनी हुई विशेष आत्माएं, ऐसे ही हमारी परम आदरणीय त्याग मूरत, तपस्या की मूरत राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रांगण में आज इतना सुंदर अनुभव कर रहे हैं, आप इस प्रांगण को संभालते हैं, निर्देशिका हैं, और बहुत सारी आत्माएं जो इस स्थान पर आती हैं आपसे मिलकर और आपकी वाणी का लाभ लेकर के यहाँ से जाते हैं। तो ऐसे हमारी प्रभा दीदी जी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि 13 वर्ष की आयु से आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में जुड़े। इतना ही नहीं, आप वो महान हस्ती हो कि स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनको हम दादा लेखराज कहते हैं, आप दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की विशेष ट्रेनिंग आपने ली है, इससे बड़ी महान व्यक्ति कोई नहीं हो सकती। आपने हमारी विशेष जो दादियां, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी, ऐसी विशेष दादियों की आपने पालना ली है और उनसे बहुत ज्ञान रत्नों का अखूट भंडार अपने अंदर पाया है। दीदी जी, वर्तमान समय गुजरात के भरूच सेवा के सब जोन सेवा केंद्र के आप संचालिका हो, उनको भी संभालते हो, तथा आपकी सहनशीलता, आपके अथक नेता और दूरदर्शिता को देखते हुए आपको वोकेशनल अवार्ड से गुजरात रोटरी क्लब के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे परम आदरणीय दीदी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ साथ आप गुजरात जोन एजुकेशन विंग के आप कोऑर्डिनेटर हैं और आपने अपनी उपस्थिति में रहते हुए मेडिकल विंग, यूथ विंग, ऐसी बहुत सारी विंग्स की रिलीज को भी आपने कंडक्ट किया है, ऐसी सेवाओं को आपने संभाला है। मैं आपका परिचय क्या दूं? आप इतनी महान हस्ती हैं कि स्वयं परमात्मा ने आपको नवाजा है, स्वयं परमात्मा ने आपको नवाजा है। और इतना ही कहना चाहती हूँ, फूल खिला खुशबू चारों ओर छाई, आपके आने से, दीदी जी के आने से समारोह में फिर से अलौकिक आभा छाई, फिर से अलौकिक आभा छाई। ऐसी मैं परम आदरणीय प्रभा दीदी जी से अनुरोध करती हूँ, आज के कार्यक्रम के उपलक्ष में आप अपने शुभ वचन, आशीर्वचन हम सबके समक्ष रखेंगे। परम आदरणीय प्रभा दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान सरोवर के, हार्मनी हॉल के इस सुंदर स्टेज पर हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी संत महात्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको उपस्थित देख करके आज हम सभी ज्ञान सरोवर निवासी बहुत खुश हो रहे हैं। आज इस संत समागम को देख करके मुझे विशेष ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सबसे पहले संत सम्मेलन जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ओम शांति भवन के अंदर हुआ था, वो सीन आज मेरे को सामने आ रहा है कि कैसे जो ओम शांति भवन का सीन था, आज वही सीन ज्ञान सरोवर में हम देख रहे हैं। ज्ञान सरोवर के अंदर हर साल हमारा ये प्रोग्राम चलता ही है और हमारे सभी संतगण इस अपने ही घर के अंदर आप स्वयं आते हैं। हमें याद आता है शिव पिता परमात्मा हमेशा हम सबको एक स्लोगन पक्का कराते हैं कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो परमात्मा सुखमय संसार बनाने के लिए आया हुआ है और उस सुखमय संसार को बनाने के लिए परमात्मा ने जो विधि रखी है वो विधि है कि सर्व के सहयोग से जो कार्य होता है उसके अंदर सफलता सदा मिलती है, जिसका उदाहरण हम सभी शास्त्रों में भी देते हैं कि गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए उसमें सबके सहयोग की जब उंगली लगी तब वो गोवर्धन पर्वत उठा। इसी प्रकार ये कलयुगी संसार जिसके अंदर दुख अशांति कलह कलेश और कितनी हम देख रहे हैं कि कितनी प्राकृतिक आपदाएं आदि आती रहती हैं और जिसके कारण आज मनुष्यों का जीवन कितना दुख और अशांति में बन गया है, उस जीवन को सुख शांति में बनाने का जो कार्य है वो परमपिता परमात्मा ने उठाया है और साथ साथ परमात्मा ने जो विधि रखी है वो विधि है कि सर्व के सहयोग से वो अपना कार्य कर रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि कैसे परमात्मा के संकल्प को साकार करने के लिए आज हमारे सामने ये सभा उपस्थित है कि हम सब मिलकर के उस परमात्मा के कार्य को करें जो परमात्मा चाहता है। साथ साथ हम सब भी यही चाहते हैं कि हरेक का जीवन सुख शांति में बने और सुख शांति में जीवन कैसे बने उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयत्न करें और प्रयत्न करके परमात्मा का जो कार्य है उस कार्य को हम सब मिलकर के सफल कर सके। उसके लिए परमात्मा ने हम सबको विशेष ये भी कहा कि जो ये कार्य है इस कार्य को करने के लिए स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले हमको अपने स्व का परिवर्तन करना है और स्व के परिवर्तन के साथ साथ विश्व का परिवर्तन करना है। खाली स्वयं का ही नहीं करना है लेकिन साथ साथ हमको ये कार्य दिया है कि हमें विश्व का परिवर्तन भी करना है। जो आप सभी महान विभूतियां परमात्मा पिता की संतान आप सब इस कार्य को कर ही रहे हैं और हम सब मिलकर के परमात्मा के इस कार्य को सफल करें और उनकी इच्छाओं को पूरा करें। आज हम देखते हैं कि परमात्मा का जो कार्य है हम सब मिलकर के कर रहे हैं। हमारी परम आदरणीय दादी जी प्रकाशमणि जी जिनका स्लोगन था कि हमेशा वो हमको एक ही शब्द कहा करते थे कि हमको हर कार्य को करने के लिए हमको अपने जीवन के अंदर एक स्लोगन रखना है। जिस स्लोगन को हम अपने जीवन में रख करके चलेंगे तो हम अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे साथ साथ अपने कार्य को भी हम सफल बना सकेंगे। तो दादी जी का जो स्लोगन था वो ये था कि निमित निर्माण और निर्मल वाणी। हमारी दादी जी हमेशा हमको यही कार्य सिखाते थे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के हम निमित हैं और करण करावन हार तो स्वयं परमात्मा है। वो परमात्मा ही हम सबसे कार्य करा रहा है, हम सब तो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम कार्य करने वाले हैं, कराने वाला वो है, वो करा रहा है, हम सब निमित हैं। निमित बनकर के हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दादी जी का स्लोगन और परमात्मा ने हम सबको यही सिखाया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे तो हम सब मिल करके एक होकर के ये कार्य को करेंगे तो परमात्मा का जो संकल्प है उसको हम साकार कर सकेंगे। भगवान भी चाहता है और हम भी चाहते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ दुनिया हो जहां सुख शांति और पवित्रता हो। पहले हमारा भारत सुख शांति संपन्न था जिसके लिए हम गायन करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो वो सोने की चिड़िया भारत फिर से बने, फिर से वो श्रेष्ठ बने और उसके लिए परमात्मा ने हम सबको ये जिम्मेवारी दी है और हम सब मिल करके उस जिम्मेवारी को संभालें। यही हमारी अभी विशेष शुभ आशा है। हम सब एक हैं, एक होकर के कार्य करेंगे तो जरूर भगवान के कार्य को, भगवान के संकल्प को हम साकार कर सकेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। सभी गाइड, सभी भाई बहनों से अनुरोध है, सभी को अभी सौगात मिलेगी, कोई भी उठ के नहीं जाएंगे, सभी बैठेंगे, सबको सौगात मिलेगी, कोई उठकर नहीं जाएंगे, बाद में फिर नहीं मिलेगी। अभी हमारे बीच में जो संत गण हैं, उन सबको बाबा के घर से ईश्वरीय सौगात देने के लिए आदरणीय प्रभा दीदी और मनोरमा दीदी की जी के हाथों से सभी मेहमानों को बाबा के घर से ईश्वरीय सौगात मिलेगी। तत्पश्चात आप सभी भाई बहनों को यहाँ से दो लाइन बनानी है, दो लाइन में एक इधर से आएंगे और एक उस साइड से आएंगे, दो लाइन में सभी भाई बहनों को सौगात लेने आना है। एक तो ये डायरी है और दूसरा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, दोनों में से कोई भी एक ही आपको लेना है। और दूसरा कि बीके भाई बहन और गाइड जो आए हैं वो आज सौगात नहीं लेंगे। तीसरी बात है कि कल से हमारा सेशन शुरू होगा तो 4 बजे कल अमृत वेला बहुत ही सुंदर मेडिटेशन होता है, वो इसी हॉल में 4 बजे जो आ सकते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं वो कल सुबह 4 बजे यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद सुबह 6:30 से 8 बजे तक अनुभूति सत्र है, आत्म अनुभूति सत्र है, कोई भी भाई बहन इस सत्र को मिस नहीं करना और सभी शार्प 6:30 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद 10 बजे उद्घाटन सत्र, बहुत सुंदर उद्घाटन सत्र है 10 बजे से 1 बजे तक। बाद में शाम को 5 बजे से 8 बजे तक अनुभव सत्र है। और दूसरी बात है कि जो गेस्ट आए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था डाइनिंग नंबर हॉल जो 2nd फ्लोर पे है वहाँ पर जाएंगे, और जो हमारे संत गण हैं उनकी खाने पीने की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर में 2 नंबर हॉल में की गई है। तो कृपया आप इस बात का सभी ध्यान रखेंगे, ग्राउंड फ्लोर में 2 नंबर हॉल में हमारे संत जाएंगे। और इसके बाद इसी हॉल में ही सभी प्रोग्राम होंगे, तो आप सभी, आप सबके लिए घूमने का भी समय दिया है तो आप उसी समय के अनुसार जाएं। आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हो आप पूरी रीति से अटेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी संतों को ईश्वरीय सौगात दी जाए। 1 मिनट हम परमात्मा स्मृति में बैठ के फिर आगे।